मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 23 नवंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लिए भी मैंने जो जिस विषय का चुनाव किया है, इनफैक्ट वह कल के विषय का ही एक्सटेंशन है, उसी सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल के मेल के जरिए जो मुझे आदेश ही मैं कहूंगा जो मिला है वो यह कि सर आपने जो यह बात कही कि हमें अपने नजरिए को तटस्थ रखना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को पल्यूट यानी प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, तो इसके बारे में उपाय बताइए। और मुझे लगता है कि उनकी यह डिमांड, उनकी यह मांग बहुत ही जेन्यून है, बहुत ही सही है, क्योंकि यदि मैं उपाय नहीं बता पाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे यह भी नहीं बताना चाहिए कि आपको ये करिए, आपको ये करना चाहिए। मुझे उसके साथ यह भी बताना चाहिए कि आप इसको करेंगे कैसे। तो मित्रों उन्हीं के शब्दों का सम्मान करते हुए आज के लिए मैंने जो विषय चुना है वह आप कुछ उसे इस तरह से कह सकते हैं कि नजरिया तटस्थ कैसे रहे, यानी कि हमारा जो अपना दृष्टिकोण है उसको हम कैसे अधिक से अधिक तटस्थ बनाकर रख सके। देखिए मित्रों एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब हम तटस्थता की बात करते हैं तो व्यावहारिक रूप से कैसी तटस्थता, देखिए जो शब्द है तट स्थित, तटस्थ शब्द इसी से बना हुआ है। जैसे कि आप नदी के किनारे खड़े हैं, नदी के तट पर खड़े हैं और क्या देख रहे हैं, बहते हुए पानी को देख रहे हैं, बस दैट्स ऑल। पानी बह रहा है, अपने ढंग से बह रहा है, उसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तट पर खड़े हैं और पानी अपनी तरह से बहता चला जा रहा है। इसे ही कहते हैं तटस्थ, यानी कि तट पर स्थित होकर के घटनाओं को देखना, बहते हुए पानी को देखना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहता है, चाहे उसकी प्रशंसा में कह रहा हो या उनकी आलोचना में कह रहा हो, मैं उसे सुन रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भैया चुप रहो मुझसे ये बातें मत करो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन सुनने के बाद उनके द्वारा कही गई बातों के आधार पर मैं अपनी कोई धारणा नहीं बना रहा हूं, मैंने उनकी बातों को सुना ठीक उसी तरह से जैसे मैं बहते हुए पानी को देख रहा हूं और इसके बाद मैं भूल गया, मैंने उसे छोड़ दिया। हां जब मैं खुद उन व्यक्ति से मिलूंगा और जब मैं बातचीत करूंगा, मेरा उनसे व्यवहार होगा, इंटरेक्शन होगा, तब फिर मैं उनके बारे में अपनी ओर से धारणा बनाऊंगा और मैं ये जो धारणा बनाऊंगा उस धारणा में जो पहले मैंने उनके बारे में सुना था उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई योगदान नहीं होगा, अच्छा या बुरा कोई भी। मित्रों यह है तटस्थता का नियम। लेकिन सवाल यह है क्या व्यावहारिक रूप में यह संभव है? मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जब भी हम लाइफ मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो सिद्धांत एक बात होती है और उसका व्यावहारिक पक्ष अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिद्धांत से बिल्कुल अलग होता है, नो डाउट वह सिद्धांत से जुड़ा हुआ ही होता है, और अगर वह उससे बिल्कुल अलग है तो फिर सिद्धांत का कोई मतलब भी नहीं है, वह उससे जुड़ा हुआ होता है लेकिन वह उसकी कार्बन कॉपी नहीं होता। यानी कि सिद्धांत में जो बात कही जा रही है ज्यों का त्यों उसे उतार पाना जीवन में आसान नहीं होता। जैसे देखिए कि एक क्रिकेट का एम्पायर है, एम्पायर से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वह बिल्कुल तटस्थ होगा, और वह कोशिश भी करता है कि वह तटस्थ रहे और हम मानकर चलते हैं कि वह तटस्थ है। इसके बावजूद आप देखें कि एम्पायर से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और ये जो गलतियां होती हैं, चलिए एक तो यह कि देखने में कोई चूक हो गई, समझने में कोई भूल हो गई, वो बात तो अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल जो एम्पायर है वो भी मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते उसकी भी भावनाएं हैं, केवल मस्तिष्क नहीं है, और भावनाएं जिसमें भी होंगी उसका किसी न किसी रूप में सामने वाले से लगाव या दुराव भी होगा। जैसे मान लीजिए कि अब एम्पायर खड़ा है और दो टीम खेल रही है तो किसी भी वजह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस एम्पायर का किसी एक टीम से लगाव हो जाएगा कि यार ये जीत जाए, या एक से दुराव हो जाएगा कि इसको नहीं जीतना चाहिए या ये तो बेकार टीम है, जो भी है उसके धारणा, उसके दिमाग में जो भी धारणा बन जाए थोड़ी सी बनेगी। अब वो क्या करता है कि अपने ही अंदर एक संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है कि नहीं नहीं मुझे तटस्थ रहना है। और सच पूछे तो यह अंतर संघर्ष ही जो मन में वो जूझ रहा है यह उसे तटस्थता के निकट ले जाता है। पूरी तरह से तटस्थ तो नहीं कर पाता लेकिन उसके निकट जरूर ले जाता है। और व्यवहारिक जीवन में हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप जैसे न्यायाधीश को देखिए, जजेस से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तटस्थ रहेगा, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, इसके बाद उस मामले से संबंधित जो कायदे कानून हैं उनको देखेगा, समझेगा, और इसके बाद बिना किसी के लगाव के, बिना किसी दुराव के, जिसे आप कह दे कबीर की भाषा में कह सकते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस सिद्धांत को अपनाते हुए वह अपना फैसला सुना देगा, राइट। लेकिन आपने यह भी व्यावहारिक स्तर पर देखा है फ्रेंड्स कि जब किसी न्यायाधीश के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है और उसके खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की जाती है तो वहां वो फैसला बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यायाधीश की अपनी कोई चूक है, कोई भूल है, यहां आप इसे केवल तटस्थता के सिद्धांत के आधार पर सोच करके देखिए कि व्यावहारिक जगत में सच पूछिए तो तट पर खड़े होकर बहते हुए पानी को देखने के सिद्धांत को हम ज्यों का त्यों अक्षरशः लागू नहीं कर पाते। यह एक आदर्शतम स्थिति है, एक मंजिल है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा इसके करीब पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा इसके करीब पहुंच सके, बस दैट्स ऑल। और उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा और वही हमारी जिंदगी को बिल्कुल एक नया रूप दे देगा, नई ऊंचाई तक पहुंचा भी देगा, राइट मित्रों। अब आइए मैं इसके दूसरे पक्ष पर बात करता हूं। अब आप देखिए कि हमारा जो दिमाग दूसरों से प्रभावित होता है उसमें सच का अंश कैसे होता है, कितना होता है, हमें यह बात समझना होगा। मित्रों मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत अच्छा आधार यह हो सकता है कि हम ये जानें कि सच होता क्या है। ये हालांकि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सवाल है कि सच होता क्या है, मैं उसकी परिभाषा पर और उस पर नहीं जाना चाहूंगा, और सच पूछे तो उसकी जरूरत भी नहीं है। केवल इतना जान लेना जरूरी है कि सबका अपना अपना सच होता है, और यह बात मैं शायद इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सबका अपना अपना सच होता है, और सीधी सी बात है कि जब सबका अपना अपना सच होता है तो यह जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर सच क्या है। और अगर यह जानना मुश्किल है कि सच क्या है तो फिर हम किसी की बात पर कैसे यकीन करके और उसी के अनुकूल अपनी धारणा बना लें, नहीं बनाया जाना चाहिए। तो सच को कौन प्रभावित करता है, आप देखिए कि आपके अपने जीवन के ये अनुभव भी रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के बारे में कुछ लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं कि वो बड़ा भला आदमी है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, और उसी व्यक्ति के बारे में दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं कि अरे वो तो बहुत बुरा है, उससे बच करके रहना, वो तो बड़ा घटिया आदमी है, बहुत बेईमान है, उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। एक ही व्यक्ति है, लेकिन याद रखिए कि ये जो दोनों बातें कही जा रही है वो एक ही व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक व्यक्ति के बारे में दो व्यक्ति दो तरह की बातें कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर आप इस दो को 12 में तब्दील कर दें तो पता लगा कि वो 12 व्यक्तियों की उस व्यक्ति के बारे में जो बातें होंगी वो अलग अलग होंगी। अब आपके पास 12 वर्जन है, 12 आपके पास वक्तव्य है, उसके 12 संस्करण है एक व्यक्ति के बारे में। अब वो व्यक्ति तो 12 नहीं है, वो तो एक ही है ना, तो फिर ये 12 उसके बारे में ओपिनियन कैसे हैं। और ये भी नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो कि भैया लाल रंग है तो सभी तो लाल रंग के हैं, एक लाल रंग थोड़ा सा गाढ़ा है, दूसरा थोड़ा सा कम गाढ़ा है, तीसरा थोड़ा सा लाइट है, इस तरह की बात नहीं है। पता लगा एक सफेद है तो दूसरा काला है, एक कह रहा है अच्छा है, दूसरा कह रहा है बुरा है, ऐसा क्यों? सामान्यतया मित्रों व्यावहारिक जगत में जो होता है वह यह कि जिसके बारे में भी हम धारणा बनाते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, स्थान हो, दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो उसके बारे में विचार बनाने के लिए हमें बाध्य करते हैं या जिनके आधार पर हम अपने विचार बनाते हैं। पहला होता है हमारा अपना स्वार्थ, जिससे भी हमारा स्वार्थ सधेगा वह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और जिससे हमारे स्वार्थ में बाधा आएगी वह हमारे लिए बुरा होगा। और जितना ज्यादा स्वार्थ सधेगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, और जितना ज्यादा हमारे स्वार्थ में बाधा आएगी वह उतना ही ज्यादा बुरा होगा। स्वार्थ मतलब ये हमारा अपना स्वार्थ होता है जो उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने का निर्धारण करता है। आप इसको प्रैक्टिकली तौर पर देख भी सकते हैं। दूसरा होता है हमारी रुचि। ये नहीं कि हम सब सेल्फिश ही होते हैं और सारी चीजों का निर्धारण केवल स्वार्थ के आधार पर ही होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें कोई कुछ लेना देना नहीं होता, हमारा कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन वहां हमारी रुचि बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमारी रुचि, हमारा अपना इंटरेस्ट, जो स्थान हमको भा जाता है वह स्थान हमारे लिए अच्छा हो जाता है, और जो स्थान हमको नहीं भाता है वह स्थान हमारे लिए बुरा हो जाता है। और यही बात सभी चीजों पर लागू होती है। अब आप देखिए कि जो स्वार्थ है और जो रुचि है, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं दो बातों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे प्रमुख और सबसे प्रबल तत्व है। अब आप देखिए कि हर व्यक्ति का स्वार्थ अलग अलग है और हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग है, और सच पूछे तो यही इस धरती की खूबसूरती भी है। आप सोच करके देखिए कि सबका स्वार्थ एक जैसा हो जाए, सबकी रुचियां एक जैसी हो जाएं, तो सच में ये दुनिया कितनी एक रंगी नहीं हो जाएगी, एक रंगी हो जाएगी, नीरस सी लगेगी, उबाऊ जैसी लगेगी। यार यहां तो कुछ बदलाव के लिए है ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल एक ही जैसा है। केवल पहाड़ी पहाड़ हो, केवल जंगली जंगल हो, केवल रेगिस्तानी रेगिस्तान हो, केवल समुद्री समुद्र हो, सोच करके देखिए तो जो खूबसूरती है वो वैविध्यता में है। इसीलिए जब हम अलग अलग रुचियों की बात करते हैं, अलग अलग स्वार्थ की बात करते हैं, तो इसे आप नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा कि यार कितना अच्छा होता ना कि सब एक ही जैसा सोचते, एक ही जैसी चीजें पसंद करते, फिर इस दुनिया में भयानक किस्म से आपाधापी मच जाती, मार काट मच जाती। इस पर जरा सा थोड़ा व्यावहारिक रूप में विचार करके देखिए तो विचार करने में आपको मजा भी आएगा कि सब एक ही चीज को चाह रहे हैं, एक ही के पीछे भाग रहे हैं, पूरी दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही है, तो क्या हालत हो जाती दुनिया की। तो खैर मित्रों, तो यह एक अच्छी बात है कि सबके स्वार्थ अलग अलग होते हैं और सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति सभी के विचार भी काफी कुछ अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, चूंकि यह विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं थोड़े से विस्तार से चला गया हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसे मैं कल पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज बस इतना ही। अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।